بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم یہ کتاب ہے خطبات عارفین حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ کے اصلاحی خطبات کا مجموعہ ہے رمضان المبارک کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کی ایک مجلس کا ہم ابھی اس کا پڑھ لیتے ہیں اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے نورانی تاثیر رکھی ہے ایمانی تاثیر رکھی ہے ایقانی تاثیر رکھی ہے احسانی تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں سنور جائیں پاک ہو جائیں صاف ہو جائیں شفاف ہو جائیں نفس کی علائشوں سے پاک بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور وہ بھی علائشیں ڈالتا رہتا ہے اس کی علائشوں سے پاک انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست سمائیں گے ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے اللہ کی محبت سے معمور ہوں گے اللہ کی رعاتات کو شوق اور رغبت سے بھرنے والے بنیں گے اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے اگر اپنے دل میں جھانکیں تو ہم میں سے ہر ایک اس کو صاف محسوس کرے گا کہ ہر وقت دل کے اندر کشمکش چلتی ہے منفی جذبات ابھرتے ہیں غلبہ پا لیتے ہیں معلوم ہوتے ہوئے بھی غلط سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے چاہتے ہوئے بھی صحیح کو اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ کشمکش ہر وقت چلتی ہے تو دل کے اندر ایسی صلاحیت حاصل کرنی ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایسی قوت آ جائے ایسی ہمت آ جائے جو ان منفی جذبات پر ہمیں غلبہ پا کے دے اور ہر اطاعت کو کرنے والا بنا دیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ عارفی بھی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ کی معرفت اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہو چکی تھی ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ تو اس میں تاثیر ہے جس طریقے سے ہم جمعے کے دن یہاں مجلس کر رہے ہیں ان کے ہاں بھی جمعے کے دن عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی تو یہ رمضان سے پہلے کی ایک مجلس ہے اس کا تذکرہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ یہ رمضان کی تیاری کے اندر رمضان سے پہلے ہی انشاءاللہ اس سے مدد ملے گی اس مجلس کا عنوان رکھا گیا رمضان المبارک کے انوار و انعامات رمضان المبارک سے قبل یہ مجلس جو ہے جمعہ 22 شعبان 1393 ہجری 1973 میں ہوئی تھی آج بھی تاثیر ہے ہر رمضان سے پہلے ہم اس میں اس کو پڑھ رہے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم اور آپ پھر کچھ دیر کے لیے اللہ جل شانہ اور ان کے نبی اور رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے جمع ہو گئے ہیں جو ہمارے لیے انشاءاللہ بڑا سرمایہ سعادت ہے ہم بھی بیٹھ گئے ہیں رمضان سے پہلے بیٹھتے ہی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ تشکر کے جذبات ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم اور آپ کچھ دیر کے لیے اللہ جل شان اور ان کے نبی اور رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے جمع ہو گئے ہیں جو ہمارے لیے انشاءاللہ بڑا سرمایہ سعادت ہے बहुत सी बातें जानने के पीछे ना पड़िए, बस जितनी बात मालूम है उस पर ही अमल हो जाए तो बड़े काम की बात है। बहुत सी बातें जानने के पीछे ना पड़िए, बस जितनी बात मालूम है उस पर ही अमल हो जाए तो बड़े काम की बात है। हमारी इबादत व अताआत भी कुछ रस्मी सूरत की होकर रह गई हैं। हमारी इबादत व अताआत भी कुछ रस्मी सूरत की होकर रह गई हैं, और इस बदहवा ज़िंदगी में, इस बदहवा ज़िंदगी में नफसानी व शहवानी माहौल में इनकी हकीकत और अहमियत जैसी होनी चाहिए हमारे दिलों में नहीं है। देखिए, ये आज भी हालात उससे ज़्यादा बुरे हैं जो फरमा रहे हैं। इस बदहवास ज़िंदगी में नफसानी और शहवानी माहौल में आज क्या करेंगे। हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारी फ़िज़ाओं को इसने ऐसे गलबा पा लिया है, इनकी हकीकत और अहमियत। हम इबादत जो कहते हैं रस्मी हो रही है, और इस बदहवास ज़िंदगी में नफसानी व शहवानी माहौल में इनकी हकीकत और अहमियत, किन की इबादत की, ताआत की, जैसी होनी चाहिए हमारे दिलों में नहीं है। इसलिए पहले तो अल्लाह पाक से दुआ करें कि या अल्लाह, जब आपने तौफीक दी है तो आप ही इन इबादात की अहमियत, बरकात और तजल्लियात, इनके समरात, फहमे सलीम व तौफीक आमाल सालेह, हयात तय्यबा अता फरमा दें। आमीन। इसलिए मजलिस के शुरू से मैं भी बार बार यही अर्ज करता हूँ है कि अपने दिल के अंदर हम इस जज्बे से बैठें कि हमारे दिल क्या हों, बन जाएं, संवर जाएं, पाक हो जाएं, साफ हो जाएं, शफाफ हो जाएं, हैं। तो उसी के फरमाते हैं तो पहली बात तो दुआ कर लें अल्लाह से, ये दिल ही दिल के अंदर दुआ कर लें। हर दफ़ा हाथ उठा के मांगना ज़रूरी नहीं है, वो अपनी जगह पर है। इस वक्त ये नहीं कि हम बैठ के हाथ उठा के दुआ करें, दिल ही दिल में अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह, जब आपने तौफीक दी है, यानी हम बैठ गए हैं अभी यहाँ पर हैं, तो आप ही इन इबादात की अहमियत, बरकात और तजल्लियात और इनके समरात, फहम सलीम व तौफीक के आमाल सालेह और हयात तय्यबा अता फरमा दें। आमीन। ये शाबान का आखिरी जुम्मा है जब ये बात हो रही है, हमें एक जुम्मा भी और मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आइंदा हफ्ते के बाद माहिर मुबारक रमज़ान शरीफ का आगाज़ हो रहा है। काश हमको अपने ईमान की अज़मत व क़दर मंजिलत होती तो इस माह मुबारक की सआदतों से बहरावर होने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते। काश हमको अपने ईमान की अज़मत व क़दर मंजिलत होती तो इस माहवार की सआदतों से बहरावर होने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल अज़ीम है कि हमारे ज़ौफ़ ईमान और नाकारा आमाल को असर नौ कवी और कामिल बनाने के लिए रमज़ान मुबारक के चंद गिनती के दिन अता फरमाए हैं। अभी से इस पर गौर करें और इसको सोचें, और ये मौका आ रहा है, एक दफ़ा इस साल के अंदर आता है, हैं? तो हमें ये आगाज़ होने वाला है ना। काश हमको अपने ईमान की अज़मत व क़दर मंजिलत होती तो इस माह मुबारक की सआदतों से बहरावर होने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल अज़ीम है कि हमारे ज़ौफ़ ईमान और नाकारा अमाल को असर नो कवी और कामिल बनाने के लिए रमज़ान मुबारक के चंद गिनती के दिन अता फरमाए हैं। इसलिए ان کو غنیمت سمجھ کر ہمیں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ان ایام معدودہ کی قدر کرنی چاہیے۔ یوں تو اللہ جل شانہ نے ہماری دنیا و آخرت کے سرمایہ کے لیے ہم کو چند فرائض و حقوق واجبہ کا مکلف بنایا ہے۔ یوں تو اللہ جل شانہ نے ہماری دنیا و آخرت کے سرمایہ کے لیے ہم کو چند فرائض و حقوق واجبہ کا مکلف بنایا ہے، مگر اس مبارک ماہ میں چند نوافل اور مستحبات کے اضافے کے ساتھ ہم کو زیادہ سے زیادہ حلاوت ایمانی اور ایمان کی پاکیزگی اور اپنے حصول رضا کا موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ قریب آ رہا ہے، چند دن ہیں، ابھی سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں ہیں کہ اس مبارک مہینے میں نوافل مستحبات کے اضافہ کے ساتھ ہم کو زیادہ سے زیادہ حلاوت ایمانی۔ اللہ سے مانگو اللہ ہمارے اس احساس کو، اس حس کو، اس ذوق کو بیدار فرما دے کہ ایمان کی حلاوت ہم چکھ لیں، ہمارا دل کے اندر کا وہ حاصہ بیدار ہو جائے جو ایمان کی حلاوت کو چکھے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک کی رحمت خاصہ متوجہ ہوگی اور اللہ پاک کی خصوصی رحمت کا نزول ہوگا، بارش کی طرح برسے گی، بارش کی طرح۔ ابھی سے ہم تیار ہو جائیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ حلاوت ایمانی اور ایمان کی پاکیزگی اور اپنے حصول رضا کا موقع عطا فرمایا، اس کی قدر کرو اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اور اس کے شروع ہونے سے پہلے اپنے ظاہری و باطنی اعضاء کو خوب توبہ استغفار سے پاک و صاف کر لو۔ یہ ہے اب ہمارے لیے کام کہ موقع تو اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اللہ ہمیں پہنچا بھی دے، یہ بھی مانگے، کوئی پتہ کس کو، اللہ ہمیں موقع عطا فرما دیں ہاں، تو اس لیے اس کے شروع ہونے سے پہلے اپنے ظاہری و باطنی اعضاء کو خوب توبہ استغفار سے پاک و صاف کر لو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب نبی اور رحمہ کی امت پر اس لیے احسان و انعام فرمایا کہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے فائز المرام ہونے پر خوش ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان کا مصداق بنے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى۔ اس لیے ہمارے دن میں بھی شرافت نفس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ اور اپنے آقائے نامدار نبی اور رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی حتی الامکان کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھیں۔ اس لیے ہم اس وقت عہد کریں، ہم بھی، یہ اس مجمع سے کہتا اس وقت تھا، ہم بھی اس وقت کیا کریں، عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس ماہ مبارک کے تمام لمحات شب و روز اسی احتیاط اور اہتمام میں گزاریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ ابھی چند روز باقی ہیں، ہم ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں۔ احتیاط اس بات کی ہے کہ تمام ظاہری و باطنی گناہوں سے بچیں گے، ابھی سے شروع کر دیں کہ تمام ظاہری و باطنی گناہوں سے بچیں گے، اور اہتمام اس بات کا کہ زیادہ نیک کام کریں گے اور عبادات و طاعات میں مشہور رہیں گے۔ یوں تو سب دن اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، ہر وقت اور ہر آن انہی کی مشیت کار فرما ہے، اور ہماری تمام عبادات و طاعات انہی کے لیے ہیں، وہی ہم کو دنیا آخرت میں اس کا صلہ مرحمت فرمائیں گے، مگر امتیان نبی اور رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ उनका लामतनाही एहसान खसूसी यह है कि फरमाया ये महीना मेरा है, इसका सिला मैं खुद दूंगा। अल्लाह पाक क्या फरमा दिया, ये महीना मेरा है, इसका सिला मैं खुद दूंगा। इसका एक माना ये है जो सिला और अजर इस माह के आमाल का होगा वो बेहद बेहिसाब होगा, और ये बेहद बेहिसाब होना अल्लाह ताला अलीम खबीर के इल्म में है, हम नहीं जान सकते। इस एहसान शनासी के जज्बे को कवी करने के लिए तवक्कलन अल्लाह हमको भी अजम बिल जज्म कर लेना चाहिए। इसी एहसान शनासी के जज्बे को कवी करने के लिए तवक्कलन अल्लाह हमको भी अजम बिल जज्म कर लेना चाहिए कि इंशाल्लाह हम जो कुछ भी करेंगे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, इंशाल्लाह हम खुद मुशाहदा करेंगे। अब तहिया कर लीजिए आज इसी वक्त से, अब तहिया कर लीजिए कि अब एक पाकीज़ा मोहताज ज़िंदगी गुजारेंगे, आँखों का गलत अंदाज ना होने पाए, समाज में फूल बातें ना आने पाए, बेकार बातें मशहूर ना हों, अखबार बीनी से ज़्यादा शरफ ना होने पाए। आज का सबसे बड़ा ख़तरनाक मशगला क्या है, मोबाइल नेट। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें इसका भी एहसास अता फरमा दे। इसलिए फरमा रहे हैं कि अभी से तहिया कर लीजिए कि अब एक पाकीज़ा मोहताज ज़िंदगी गुजारेंगे, आँखों का गलत अंदाज ना होने पाए, समाज में फूल बातें ना आने पाएं, बेकार बातें मशगूल ना हो, अखबार बीनी से ज़्यादा शगफ ना होने पाए, इसके अलावा तमाम गैर ज़रूरी ताल्लुकात भी कम कर दें, ऐसी तकरीबात में शरीक ना हो जहाँ शरीयत के खिलाफ ना हो, तो इंशाल्लाह पाक को साफ रहेंगे। और याद रखो कि नापाकियों के साथ अल्लाह ताला से सही ताल्लुक पैदा नहीं हो सकता, ये भी अल्लाह ताला का फजलो करम, अल्लाह ताला के फजलो करम का किस कदर बड़ा एहसान है कि अपने गुनाहगार गफलत शुदा बंदों को पहले ही से मुतनब्बे कर दिया कि जैसे ही रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो तुम अपने उम्र भर के तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ़ करा लो। ये भी अल्लाह ताला का फजलो करम का, अल्लाह ताला के फजलो करम का किस कदर बड़ा एहसान है कि अपने गुनाहगार गफलत ज़दा बंदों को पहले ही से मुतनब्बे कर दिया कि जैसे ही रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो तुम अपने उम्र भर के तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ़ करा लो, ताकि तुमको अपने मुरब्बी हकीकी से सही व कवी ताल्लुक़ पैदा हो जाए, और अगर तुमने हमारी मग़फ़रत से वासिया व रहमत कामला की कदर ना की तो फिर तुम्हारी तबाही या बर्बादी में कोई कसर बाकी ना रहेगी। अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए। अब इस ऐलान रहमत पर कौन ऐसा बदनसीब बंदा है जो इसके बाद महरूम रहना चाहेगा, इसलिए हम सब लोग यकीनन बड़े खुशनसीब हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना अपनी ज़िंदगी में पा रहे हैं। अब तमाम जज्बात अब्दियत के साथ और कवि नदामत के साथ बारगाह इलाही में हाज़िर हूँ, और इस माह मुबारक के तमाम बरकात व अनवार व तजल्लियात इलाहिया से माला माल हों, अल्लाह ताला इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक हम सबको अता फरमा दें, आमीन। अच्छा, अब आगे फरमा रहे हैं जी भर कर दो दिन, तीन दिन, चार पांच दिन अपने तमाम गुनाह उम्र भर के जितने याद और तस्वर में आ सकें, और जहाँ जहाँ नफ्स व शैतान से मकलूब रहे हैं, चाहे वो दिल का गुनाह हो, आँख जबान का या कान का, सब नदामत कल्ब के साथ बारगह इलाही में पेश कर दो और कहो कि अब वादा करते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, या अल्लाह हमको माफ़ फरमा दीजिए, या अल्लाह हमसे गफलत व नादानी की वजह से, नफ्स व शैतान की शरारत से, आमदन व सहवन जो भी गुनाह कबीरा सगीरा सादर हो चुके हैं, जो हमारी दुनिया और आखिरत के लिए इंतहाई तबाहकुन है, और जिनकी शामत अमाल का खमियाजा हम हर रोज़ भुगत रहे हैं, अपनी मगफरत कामिला और रहमत वासिया से सब माफ़ फरमा दीजिए। हमें इंतहाई नदामत कल्ब के साथ आपकी बारगाह में मिन्नत समाजत के साथ दस बदुआ और सर को सजदा है। तौबा का तरीका हाँ बता रहे हैं, हाँ फिर इसको पढ़ लेते हैं, जरा गौर से इसको हम सुने। जी भर कर दो दिन, तीन दिन, चार पांच दिन अपने तमाम गुनाह उम्र भर के जितने याद और तस्वर में आ सकें, जहाँ जहाँ नफ्स और शैतान से मगलूब रहे हैं। देखिए एक बात तो ये बिल्कुल पक्की है, हम में से हर एक अगर अपने दिल में झांके तो अपने आप को हम अच्छी तरह वाकिफ पाएंगे, क्यों जी है या नहीं? जो कुछ किया है मैंने, आपको मालूम नहीं, मुझे मालूम है, इसलिए यहाँ अपने आप को कह रहे हैं। जी भर कर दो दिन, तीन दिन, चार पांच दिन अपने तमाम गुनाह उम्र भर के जितने याद तस्वर में आ सकें आ जाएंगे, और जहां जहां नफ्स और शैतान से मगलूब रहे हैं, चाहे वो दिल का गुनाह हो, आंख जबान का या कान का, सब नदामत कल्ब के साथ बारगह इलाही पेश करते हैं और कहो या वादा करते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, या अल्लाह हमको माफ़ फरमा दीजिए, या अल्लाह हमसे गफलत व नादानी की वजह से, नफ्स व शैतान की शरारत से, आमदन व सहवन जो भी गुनाह कबीरा सगीरा सादर हो चुके हैं, जो हमारी दुनिया व आखिरत के लिए इंतहाई तबाहकुन है, और जिनकी शामत अमाल का खमियाजा हम हर रोज़ भुगत रहे हैं, अपनी मगफरत कामिला और रहमत वासिया से माफ़ फरमा दीजिए। हम इंतहाई नदामत कल्ब के साथ आपकी बारगाह में मन्नत समाजत के साथ दस बा दुआ और सर ब सजदा हैं। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हर वो बात जो काबिल मुआख़ज़ा हो माफ़ फरमा दीजिए। अपने ज़बान से, अपने दिल से अल्लाह से बातें करें, हर वो बात जो काबिल मुआख़ज़ा माफ़ फरमा दीजिए। दुनिया में, कब्र में, दोज़ख में, हशर में, पुल सिरात पर, जहाँ भी मुआख़ज़ा हो सकता है, सब माफ़ फरमा दीजिए। और या अल्लाह आप जितनी ज़िंदगी अता फरमाएंगे वो हयात तय्यबा अमाल सालिहा के साथ हो, या अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत और कवी फरमा दीजिए। इंशाअल्लाह हस्बे वादा इलाही हमारी ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। इस यकीन के साथ तो अभी दिन है ना नहीं, एक दफ़ा जी भर के अब आगे अगली बात गौर से। अब खबरदार अपनी गुज़श्ता गफलतों और कोताहियों को अहमियत ना देना, ज़्यादा तकरार ना करना, मायूस और नाउमीद ना होना। जब उनका वादा है तो इंशाअल्लाह सब माफ़ हो जाएगा। एक बात तो ये है, आज एक मशगला बन गया, मैं बड़ा गुनाहगार, मैं बड़ा गुनाहगार, मैं बड़ा गुनाहगार, लोगों को सुनाते फिरते हैं। एक जगह फरमाएंगे कि यह कहना कोई अच्छी बात नहीं है, जिसका गुनाह किया उससे माफी मांग लो, लोगों को क्यों सुनाते हो, इसकी तकरार क्यों करते हो, इसको बार बार याद क्यों करते हो। इसलिए फरमा रहे हैं कि एक दफा इससे रमजान से पहले हैं, हम बैठकर तन्हाई के अंदर जी भर के याद कर करके जिंदगी भर के सारे गुनाह, सारी तफसील बता दी है अल्लाह से, क्या कर, हर गुनाह दिल में हुआ, जबान से हुआ, नाक कान से हुआ, जो भी सारे। अब यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह का वादा है तौबा पर अल्लाह माफ फरमा देते हैं, इसलिए फरमाते हैं अब खबरदार अपनी गुज़श्ता गफलतों और कोताहियों को अहमियत ना देना, ज़्यादा तकरार ना करना, मायूस ना, उम्मीद ना होना। जब उनका वादा है तो सब इंशाअल्लाह माफ हो जाएगा, लेकिन हाँ चंद गुनाह ऐसे हैं जिनकी माफ़ी मुश्किल है, वो भी ज़रा गौर से सुन लें। चंद गुनाह ऐसे हैं जिनकी माफ़ी मुश्किल है, मुसलमान मुशरिक तो होता नहीं, मुसलमान मुशरिक तो होता नहीं, लेकिन कभी कभी ये मुमकिन है कि परेशान होकर आलम इसबाब की किसी कुव्वत को मुअस्सर समझ लिया हो, ये शिर्क खफी। मुसलमान मुशरिक तो होता नहीं, लेकिन कभी कभी ये मुमकिन है परेशान होकर आलम इसबाब की किसी कुव्वत को मुअस्सर समझ लिया हो, दुनियावी वसायल व ज़राए के सामने इस तरह झुक गए हो जिस तरह एक मोमिन को झुकना ना चाहिए। या अल्लाह आप ये सब लफ्ज़ में माफ फरमा दीजिए। बस अब मगफरत कामला हो गया, अब उनकी रहमत वासिया तलब करो। इसी तरह एक नाकाबले माफ गुनाह कबीरा ये है कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से खोट और कीना हो, ये हैं सूफी, ये हैं पीर। मैं इसलिए बार बार ये कहता रहता हूँ कि आज सूफी के लफ्ज़ से हमारे अंदर कोई एहतराम के जज्बात पैदा नहीं होते, पीर का लफ्ज़ भी बदनाम हुआ पड़ा है। क्यों? हमने हर एक को पीर कहना शुरू कर दिया, हर एक को सूफी कहना शुरू कर दिया। सूफी ये हैं दिन के दिल साफ शफाफ हो चुके हैं, ये वो पूरे वसूख से यकीन से बता रहे। पीर वो बूढ़ा है जिसने ज़िंदगी का एक अक्सर हिस्सा अपने नफ्स से मुकाबला करके इससे बचने का फन सीखा है, इससे फ़ायदा उठा लो। शैतान के दाव से बचना, मौल की फ़ौ से बचना इसने मेहनत करके सीखा है, इस तजर्बाकार है, फ़ायदा खा लो। इसे फरमा रहे हैं कि यानी मुसलमान मुशरिक तो होता नहीं, लेकिन कभी कभी मुमकिन है कि परेशान होकर आलम इसबाब की किसी कुव्वत को मुअस्सर समझ लिया हो, दुनियावी वसायल व ज़राए के सामने इस तरह झुक गए हों जिस तरह एक मोमिन को झुकना ना चाहिए। या अल्लाह आप ये सब लफ्ज़ें भी माफ़ फरमा दीजिए। बस अब मकसद कामला हो गया, अब उनकी रहमत वासिया तलब करो। इसी तरह एक नाकाबले माफ़ी गुनाह कबीरा ये है एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से खोट और कीना हो। कीना रखने वाले के मुतालिक हदीस है कि ऐसा शख्स है जो शब कदर की तजल्लियात मकफत और कबूलियत की दुआ से महरूम रहेगा। कीना रखने वाले के मुतालिक हदीस है कि ये ऐसा शख्स है जो शब कदर की तजल्लियात मकफत और कबूलियत की दुआ से महरूम रहेगा। आलम ताल्लुकात में अपने अहल व अयाल, अजीज व अकारिब, दोस्त अहबाब सब पर एक नज़र डालो और देखो कि इनमें किसी तरह दिल में किसी किस्म का खोट कीना गुस्सा तो नहीं है, किसी का तलफी तो नहीं होती है, किसी को हमारी ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं पहुँची, अल्लाह पाक उस वक़्त तक राज़ी नहीं होते जब तक उसकी मखलूक हमसे राज़ी नहीं हो जाती। देखो अगर तुम इस मामले में हक बजानब और दूसरा बातिल पर है, फिर जब तुम अल्लाह पाक से मकसद चाहते हो तो उसको माफ़ कर दो, और तुम्हारी ज्यादती हो तो उससे जाकर माफ़ी मांग लो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अगर बिलमशाफा हिम्मत ना हो एक तहरीर लिख के उसके पास भेज दो, कितना आसान कर दिया। अगर बिलमशाफा, पहली बात तो यही है कि जब हमने ये एक मामला अल्लाह के साथ हमारा पड़ेगा और अल्लाह राज़ी नहीं होते जब तक उसकी मखलूक हमसे राज़ी नहीं हो जाती, तो देखो अगर तुम इस मामले में हक बजाने दूसरा बातिल पर है तो फिर जब तुम अल्लाह पाक से मफ़त चाहते हो तो उसको माफ़ कर दो, अगर तुम्हारी ज्यादती हो तो जाके माफ़ी मांग लो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर बिलमशाफा हिम्मत ना हो तो एक तहरीर लिख कर उसके पास भेज दो कि यह रमज़ान का महीना है, इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि दिलों को साफ रखना चाहिए, इसलिए हम और आप भी आपस में दिल साफ कर लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें। इसके बाद उनसे ना बदखाई करो ना दिल में इंतकाम लेने का ख्याल करो। ये रमज़ान की तैयारी, उससे पहले पहले ये काम करना है, अपने बीवी बच्चों पर भी नज़र डालो कि इनमें से कोई तुमसे नाराज़ तो नहीं, यानी उनके साथ कोई बेजा तशद्दुद या ज़्यादती तो नहीं किया है। अगर ऐसा है तो उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, बीवी से माफ़ी मांगो, बच्चों से माफ़ी मांगो, नफ्स बड़ा है। ये अल्लाह वाले देखो कैसा एक तरीका बता रहे हैं कि इनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुश उसलूबी से ऐसा बर्ताव करो जिससे वो खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, बीवी और बच्चों के लिए है उनसे माफ़ी मांगते हुए शर्म मांग ले तो अच्छी बात है, ये नहीं है, लेकिन चूंकि आमादगी नहीं होती बीवी से मांग, तो खुश उसलूबी से ऐसा बर्ताव करो जिससे खुश हो जाए। इसी तरह भाई बहन अजीज़ और अकारब, अगर किसी से भी किसी किसके रंजश है तो तुम उनको माफ़ कर दो, इसलिए कि तुम भी आखिर अल्लाह मियाँ से माफ़ी चाहते हो। लव और फजूल बातों से परहेज करो, लव बातें करने से इबादत का नूर जाता रहता है। लव बातें क्या हैं? जैसे फजूल किस्से, किसी का बेफायदा जिक्र, सियासी अमूर पर बहस, आज तो ये मशगला ही बन गया है, हर वक्त इसी में लगे रहते हैं। लव या खानदान की बातें शुरू हो जाएं, इसमें गीमत गीमत होना के इम्कान जरूरी होता है, फिर अखबार भी नहीं, या कोई और बेकार मशगला, इन सब से बचते रहो, सिर्फ 30 दिन गिनती के हैं। सुभान अल्लाह, अज़म कर लो अभी से, अगर कुछ करना ही है चाहते हो तो कलाम पाक पढ़ो, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो और दीनी किताबों का मुताला करो। रमज़ान शरीफ में दो इबादतें सबसे बड़ी हैं, एक तो कसरत से नमाज़ें पढ़ना, इसमें तरावी की नमाज भी शामिल है, इसके अलावा तहज्जुद की चंद रकात हो जाती हैं। अल्लाहु अकबर, क्या फरमा रहे हैं, तहज्जुद के चंद रकातें हो जाती हैं, अल्लाह करे तहज्जुद का भी शौक लग जाए। हम खो बैठे उस वक़्त की लज्जत को, बेमकसद रात को जाग जाग के फजर ही नहीं होती, फजर में देखो क्या हाल होता है, लेकिन देखना हाँ अभी रमज़ान आएगा तो क्या हाल होगा, भर जाएगी मस्त। मैं अक्सर सोचा करता हूँ रमज़ान की फजर में मसलाइत भरा हुआ, बहर भी भरा हुआ है, वो ऊपर भी चला जाता है, अब रमज़ान की फजर होती भी जल्दी है, ऐसा ही है ना, क्योंकि सहरी खाई हुई है, नींद ना आ जाए, हैं फुकहा ने कहा है कि जल्दी पढ़ लो, हैं तो नमाज भी जल्दी हो रही है, तो जो उस वक्त नमाजी यहाँ पर आए हैं इस मोहल्ले के हैं, दूर के नहीं हैं। अभी जुम्मे में तो चलो बाजार खुला है, वहाँ से भी आ गए और भी आ गए। फजर के अंदर खालत इसी मोहल्ले के, मैं अक्सर सोचता हूँ ये इतनी बड़ी मस्जिद जो भर जाती है वो सारा साल नजर नहीं आती है यहीं के। तो ये रमज़ान की बरकत से ये तो हम देखते हैं ना है? कि अल्लाह की रहमत खासा ऐसी मतवज्जे होती है कि दिलों का मैलान है नेकी की तरफ खुद ब खुद हो जाते हैं है? बल्कि अक्सर अर्ज किया, आप देखते भी हो, हर एक ने मुशाहदा किया होगा कि यहाँ रमज़ान का ऐलान हुआ और मेरा तो साथ ही घर है ना, चंद कदम ही है ना, कई दफ़े ऐसे हुआ है कि वहाँ से चला हूँ तो अभी तक ऐलान मैंने नहीं सुना है। लेकिन यहाँ जब दाखिल हुआ तो मस्जिद में रौनक देख के अंदाजा हो गया कि ऐलान हो गया। फिर जी हैं मिनटों के अंदर ऐसे भागे आते हमारे तबलीग वाले, अल्लाह इनकी कावशों को कबूल फरमाए। सारा साल गश्ते करते हैं, घर घर जाके हैं बुलाते हैं, मस्जिद नहीं भरती। कहीं भरती है कभी मस्जिद नहीं भरती। लेकिन देखिए अल्लाह की रहमत रमज़ान के अंदर ऐसी मुतवज्जे होती है, कोई जाता है बुलाने के लिए हैं भर जाती है मस्जिद हैं। तो ये एक ऐसा मौका है, इसलिए फरमा रहे हैं कि इसके अंदर वो जो अल्लाह ने हमारे दिलों के अंदर से हमारे मनफी जज्बात को उभारने वाली कुव्वत है, शैतान को तो बांध दिया है और नफ्स को कमज़ोर कर दिया, मगलूब कर दिया है, फ़ायदा उठाओ। तरावी भी पढ़ें, नमाजें कसरत से पढ़ें, तहज्जुद के चंद रकातें पढ़ें, क्योंकि तहज्जुद में तो उठे हुए हैं, सहरी तो तहज्जुद के वक्त में ही है। तो इस तरीके से इंतजाम कर लें, चंद रकाते हो जाए, फिर इशराक चाश्त अवाबीन का खास तौर पर इहतमाम होना चाहिए। रमजान मुबारक में अल्लाह पाक ने जो है इसका रेट बढ़ा दिया है। फर्ज 70 गुना, नफल फर्ज के बराबर, सारी जिंदगी नफल पढ़ो फर्ज के बराबर नहीं है। रमजान के अंदर इसलिए इशराक चाश्त अवाबीन का साफ एहतमाम होना चाहिए। दूसरी तलावत कलाम पाक की कसरत जितनी भी हो तौफीक हो, कलाम पाक पढ़ने से कई फ़ायदे हैं, तीन चार बातें इसमें शरीक हो जाती हैं और बहुत बाहर से बरकत है। ये दिल में अकीदत मोहब्बत अजमत और ये ख्याल करके पढ़ने से कि अल्लाह पाक से हम कलामी की सआदत हासिल हो रही है, ये दिल की इबादत है। ज़बान भी तकल्लम करती है, ये ज़बान की बात है। कान सुनते जाते हैं, ये हैं आँखें कलाम इलाही की इबादत के नकूश की ज़्यादत करती हैं और तमाम आज़ा को इबादत में जुदागाना स्वाब मिलता है। इन आज़ा का इससे ज़्यादा और क्या सही मसरफ हो सकता है? ये सआदतें नहीं बल्कि इनमें तजल्लियात इलाही मज़मर हैं, नूर हासिल होता है। और नूर के माना रोशनी के नहीं है बल्कि तमानियत कल्ब है, अल्लाह ताला का क़ुर्ब रज़ा है। तो भाई ये मुबारक महीना करीब आ रहा है, अभी से प्लान कर लो, अभी से तरतीब बना लो। चंद दिन हैं गिनती के, पहली बात तो जैसे फरमा दी है कि हम पहले से ही हैं अभी से ही हैं ये अहद करें अल्लाह से और तौबा करें, अब से लेकर हमारी आँख ना बहकने पाए। हिम्मत कर लो, बेबाक हो गई आज तो अंदाजा ही नहीं है। हिम्मत करो, कान ना बहकें, जबान ना बहके हैं, अपने आज़ा जारे पर काबू पाएं, अभी से शुरू करें। और तौबा का तो तरीका बता ही दिया है, दो दिन तीन दिन चार दिन पाँच दिन जी भर के तौबा कर लें, फिर ना तकरार करना, फिर ना बार बार याद करना है। तो भाई अभी से इसका अज़म कर लें है, ये सीज़न है। सीज़न जब आता है ताजरों को देखा क्या हाल होता है, अभी सीज़न आएगा। बोला सही खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, रमज़ान में फरमाया, हम गए हुए थे भैया, दोनों सीज़न चल रहे हैं, वो पूरे रोज पर हैं। एक दुनियावी कारोबार का, रमजान में खूब चलता है ना वो भी, हैं 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 है? एक नेकियों का भरपूर चलते हैं। अब ज़ौक की बात है, किसको किसने अहमियत दे दी, तो भाई हमें हमारे लिए तो अहम यही है, हैं इसलिए हाँ। आला दर्जा तो ये है, जैसे अभी गर्मी शुरू हो गई अभी बढ़ेगी है, तो इस गर्मी से बचने के लिए ठंडे इलाकों का रुख करते हैं हसब इस्तेतात, हर कोई कुछ ना कुछ तो कोशिश करता है ठंडक हासिल करने के लिए, कारोबार को छोड़ता है, दफ्तर से छुट्टी लेता है, किसी होता है ना होता है। अगर इसके लिए मादी ठंडक हासिल करने के लिए अपने मशागल को छोड़ सकते हैं, तो भाई ये सीज़न जो आ रहा है तो दिल के अंदर रूहानियत को लेने के लिए, रूहानी ठंडों को लेने के लिए, नेकी की कवि इस्तेदाद को लेने के लिए अगर कुछ वक़्त अपने कारोबार को छोड़ दें, आला दर्जा तो ये है कि रमज़ान को बस हम छुट्टी करके सिर्फ इबादत में लग जाएं, 11 महीने कारोबार को दे दें, 1 महीना इबादत को दे दें, चलो इतनी हिम्मत नहीं है तो कुछ तो करें ना, हाँ अपने औकात के निज़ामुल औकात ऐसे बनाएं, हाँ कुछ अपने औकात को इधर लगाएं। अगर रमज़ान की बरकात को चाहते हैं तो अभी से इसको प्लान कर लें। एक बात अक्सर अर्ज की जाती है, रमज़ान के अंदर ईद के मौका पर जो बाज़ारों का हाल होता है, रमज़ान की इबादत को लेने के लिए, इसकी मशगूली को लेने के लिए ईद की तैयारी अभी से कर लो, उस वक्त जो भीड़ और हंगामे और बाज़ारों की फ़िज़ाओं का जो हाल होता है, जो हमारे अंदर के जज्बात नेक जज्बात को मुनहदिम कर देती हैं फ़िज़ाएँ बाज़ारों की, अभी से प्लान कर लो रमज़ान से पहले। शादी आ रही हो तो उसकी ख़रीदारी बहुत पहले हो जाती है कि नहीं जाती, एक फंक्शन के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है, इसलिए कोशिश करें इस महीने बाज़ारों की रौनक ना बढ़ाएं, मस्जिदों में अमाल के अंदर एक तो ये करें कि जो ईद की ख़रीदारी है मना नहीं, चलो कर लो, वैसे ईद के लिए नए कपड़े बनाना कहीं नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना है साबत, लेकिन एक रिवाज पड़ गया चलो बना लो है? तो अभी बना लो, उस वक्त पहन ले है? तो अभी से सोचना शुरू कर दो हाँ, ताकि हमारा ज़्यादा वक़्त इस रमज़ान के अंदर हम कोशिश करें किस में गुजरे, इबादत में गुजरे, फिर इसकी लज्जत इसकी हलावत आपका दिल खुद महसूस करेगा। तो भाई दिल के अंदर की इस सलाहियत को बेदार करने के लिए कि ये हमें हमारा रहनुमा बने, हमें डाले अल्लाह की हर अताअत पर, हर नाफरमानी से रोके, इसके लिए ये तसव्वुफ या तस्फिया या नफ्स का तज़किया ये इसी के लिए है, ये मजलिस भी इसी के लिए है, ये ज़िक्र भी इसी लिए है, ताकि हमारे दिल के अंदर वो सलाहियत पैदा हो, वो कुव्वत उभरे जो हमें अल्लाह के करीब कर दे, उसकी रज़ा के करीब कर दे, उसकी खुशनुदी के करीब कर दे, और रुकावटों पर काबू पाने वाले बने, दिल में वो कुव्वत आए, वो हिम्मत आए जो नफ्स को दबा दे, जो शैतान को दबा दे, जो माहौल की गंदी फ़िज़ाओं से हमें बचा ले है? इसके लिए एक तरीका ये भी है जिसकी हमारे यहाँ मश्क की जाती है, वो ज़िक्र क़ल्बी है, ज़िक्र खफ़ी है, दिल में चुपके चुपके अल्लाह को याद करना। मैं बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा, यही है नहीं कह रहा, ये भी है, ये दिल की इस्लाह के लिए एक तरीका ये भी है, क्या ज़िक्र क़ल्बी ज़िक्र खफ़ी, इसका हुक्म भी है, वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिका तदर्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलगुदूबे वल आसाली वला तकुम मैंने वाफी सुनाया जा रहा है, जिसका मफहूम है अपने रब को अपने जी में याद करो, दिल आजीज के साथ पुकारे बगैर चुपके चुपके, सुबह भी याद करो शाम भी याद करो, गाफिल में से ना हो, तो दिल को गफलत से बेदार करने का कुरान एक इलाज ये भी बता रहा है, इस दिल में चुपके चुपके अल्लाह की याद को बसा लो, अल्लाह फरमाते हैं फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जब तुम मुझे याद करोगे मैं भी तुम्हें याद रखूँगा। हमारा याद रखना अल्लाह के नाम से है, दूसरे हमारे वज़कुरिस्मा रब्बी का व तबत्तल इलैही तब्तीला, रब को उसके नाम से याद करो तबत्तुल के साथ। ये जो सलाहियत तेमिया जिसका हमने अभी तस्करा सुना है, है? वो कुव्वत, वो हिम्मत जो नफ्स की कुव्वत को दबा दे, जो शैतान से मुकाबले पर है उससे हमें बचा दे, माहौल की फ़जाओं के गलबे से रोक ले, इस सलाहियत को लेने के लिए हमें तन्हाई में कुछ वक़्त निकालना होगा। अल्लाह करे है ये ज़रूरत भी हम समझें, इस ज़रूरत का एहसास भी हम समझें, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? जिसको ज़रूरी समझता है उसके लिए वक्त निकाल लेता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ वक्त निकाल कर, वैसे ज़िक्र का फ़ायदा होगा थोड़ा होगा, लेकिन ये जो सलाहियत लेनी है इसके लिए हमें कुछ वक्त निकालना होगा। अल्लाह करे है ये भी दिल में हमारे उतर जाए। हैं इसलिए यहाँ तो हम तालीम के लिए तरगीब के लिए जमा हुए हैं, लेकिन दिल की इसलाह के लिए जिक्र है वो हमारा तबत्तुल के साथ है। तबत्तुल ये है कि सबसे अलहदा होकर तन्हाई के अंदर बैठें और तसव्वुर से दिल पर लफ्ज़ लिखें अल्लाह, तसव्वुर के कलम से या लिखा हुआ तसव्वुर करें अल्लाह, जो रंग जिसको अच्छा लगता है, हैं? और तसव्वुर से यानी अपने इरादे से दिल के अंदर तकरार करें अल्लाह 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 अल्लाह। तबारा कस्म रब्बी का, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि रब का यह नाम बड़ा बरकत वाला है। तो इस बरकत वाले नाम को दिल में नक्श करके इसकी दिल में तकरार, ये तकरार इतनी करनी इतनी करनी, उस हाफिज की तरह जो सीने में कुरान को महफूज करने के लिए कुरान की आयात की तकरार करता है, कुरान सीने में महफूज हो जाता है, अल्लाह की याद को सीने में महफूज करने के लिए अल्लाह के मुबारक नाम की तकरार, ये इतनी करनी कि जिसका नाम ले रहे हैं, जिसको याद कर रहे हैं, जिसको पुकार रहे हैं, उसका ध्यान ख्याल जाए हमारे दिलो दिमाग के अंदर, है ऐसे समा जाए, ऐसे याद रहे कि तन्हाइयों के अंदर भी हमें उसकी हर अचाहत पर डाल दे, हर नाफामानी से रोक दे, हराम कामों से रोक दे। है तो अल्लाह से मांगे जिससे मकसूद है वो दिल में शफाफत, वो लताफत, वो पाकिजगी, वो कुव्वत अल्लाह हमें अता फरमा दे। हैं अब थोड़ी देर के लिए इसकी मशक कर लें, आंखें बंद करना इसलिए ताकि तवज्जो दिल पर आ जाए, खुली आंखों से भी किया जा सकता है। हैं अब दिल के अंदर अल्लाह के नाम के तसव्वुर के साथ, हैं दिल के अंदर अपने इरादे से तकरार करें अल्लाह 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 अल्लाह, थोड़ी देर इसकी मशक कर लें।
يا رب العالمين 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 يا جزاك الله.